त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वैच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाऊणम्। बलगोविंदसिहामणि किरणकलावरुणचरणनः किरणम्, विमलयरणेमि चन्दम्, त्रिभुवनचन्दम् नमन्सामि। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती रचित यह त्रिलोक सार नामक ग्रंथ है और उसकी हिंदी टीका हम पढ़ रहे हैं। अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 33 पर, 33। 27 तक गाथाएं हमने पढ़ी थी, उसका अर्थ भी देखा था। अभी हम 28 नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। बात अपनी ये चल रही थी कि पहले हमने ये जो चार कुंड किए हैं, प्रथम अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड, लाख योजन उसका व्यास है और उसकी गहराई है 1000 योजन। तो पहले हमने जो कुंड है उसमें कितनी सरसों आती है उसका प्रमाण निकाला। ये निकालने का तरीका क्या है, तो हम उस क्षेत्र का घनफल निकालते हैं। घनफल के लिए गोल का घनफल कैसे निकालते हैं, तो व्यास को तिगुणा करेंगे तो परिधि आती है, परिधि को व्यास के चौथाई से गुणा करते हैं तो गोल का क्षेत्रफल आता है, और उसको हाइट जो है 1000 योजन उससे गुणा करेंगे तो घनफल मिलेगा सिलेंडर की एरिया या हम कुंड की एरिया। हम ये कुंड जो है उसकी हाइट बहुत कम है परंतु उसको सिघाओ भरेंगे तो ऊपर कितनी राशि आती है, तो ऊपर का वेद हमने देखा था, वहां पर यही बात करनी है कि जो गोल का क्षेत्रफल है उसको परिधि के 11वें भाग से, वो उसको वेद है उससे गुणा करना और उसका तीसरा भाग करना। ऐसा कुछ देर देखो निकालो, वहां ये बात बताई थी, शिखाफल की बात बताई थी उन्होंने डायरेक्ट, जहां हमने वो 33 शून्य देखे थे। देखो सूची घनफल निकालने का उन्होंने ऊपर तरीका बताया था। ये गाथार्थ यहाँ 26 पेज पर ऊपर। अच्छा वो तो अलग बात है, 33 पेज में,
29 पे है।
हाँ 33 0 बताए थे ना, वही मैं देख रही थी कहाँ गया, 31 पन्ने पे। हाँ देखो नहीं, वो तो उसका उत्तर मिला, मैं उसका फॉर्मूला बताना चाहती हूँ आपको। ये 29 पेज पर होना चाहिए। देखो परिधि के 11वें भाग को मिला 29 पेज पर, लास्ट एकदम नीचे शिखाफल को कहें ना, परिधि के 11वें भाग को परिधि के 6वें भाग के वर्ग से गुणित करने पर समस्त कुंडों का शिखाफल प्राप्त होता है। और ये कैसा निकाला उसको उन्होंने बताया था। इन्हें गोल का क्षेत्रफल निकाला था। देखो पेज नंबर 30 पर देखो, ये सेकंड जो पैराग्राफ है ना, प्राप्त फल की वासना कैसे होती है, तो व्यास के तिगुनी परिधि हुई, उसको चौथाई से गुणा करने पर क्षेत्रफल हुआ, और शिखा की ऊंचाई वेद जो है परिधि के 11वें भाग से गुणित करने पर इतना लब्ध आता है। ये बात ख्याल में आई ना यहाँ पर। और उसको उसका तीसरा भाग किया ना, देखो तीन ल गुना एक चतुर्थांश ल गुना तीन ल ग्यारह अंश इंटू वन थर्ड किया है, वो शिखा का घनफल हुआ। तो अभी इसके बाद क्या करना है, हमको दोनों को मिला देना है, दोनों का मिला हुआ घनफल एक साथ, यानी डायरेक्ट उसका फॉर्मूला अलग ही बनाया। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने ये बताया है 32 पेज पर, संस्कृत जो पैराग्राफ है पहला, उसके नीचे हिंदी, कुंड और शिखा दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर कहते हैं। अभी इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, व्यास के अर्ध भाग का वर्ग करके उसको तिगुणा करना चाहिए, पुनः वेद को 11 से गुणित कर उसमें व्यास जोड़ना चाहिए। इस प्रकार जो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का परस्पर में गुणा करने से जो लब्ध होता है उसको 11 से भाजित करने पर विवक्षित कुंड और उसकी शिखा दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल प्राप्त होता है, यानी पूरा घनफल मिलेगा, नीचे का कुंड प्लस ऊपर की शिखा। ये कहते हैं, लिखते हैं क्षेत्रफल, वो है घनफल, पूरा घनफल है वो। उसको उन्होंने करके भी दिखाया था, उसको भी फिर पढ़ेंगे। व्यास का अर्ध भाग, व्यास है एक ल, उसका अर्ध भाग है ना, उसका डिवाइडेड बाय टू यानी एक द्वितीयांश ल,
उसका वर्ग,
उसके वर्ग यानी वो दो बार लिखा, एक द्वितीयांश ल गुना एक द्वितीयांश ल, ऐसा ही रखा उसको। उसको तिगुणा करना है, उसको तीन से गुणा किया, वर्ग के वर्ग यानी अर्ध भाग के वर्ग को तिगुणा करना। उसके बाद क्या करना, वेद को 11 से गुणित करना। हमारी वेद यानी कुंड की गहराई है 1000, उसको 11 से गुणित करने पर 11000 हुआ। गुणित कर उसमें व्यास जोड़ना चाहिए, व्यास हमारा 100000 है, उसमें जोड़ना 100000 और 11000 हुए। इससे ये जो हमने ऊपर देखा था ना, व्यास के अर्ध भाग के वर्ग को तिगुणा करना, उस संख्या को गुणित करना। तो अब यहाँ जो विशेषांक के चौथी लाइन में लिखा है ना, एक द्वितीयांश ल गुना एक द्वितीयांश ल गुना तीन और गुना 111000, और ये पूरी जो संख्या है उसको 11 से भाजित करने पर कुंड और शिखा दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अभी उसको उन्होंने अलग तरीके से सिंप्लीफाई किया है, क्या किया है देखो, नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। विशेषात का पहले पैराग्राफ तो समझ में आया ना, अब कहते वासो तिगुणों परिधि, यानी व्यास के तिगुणा परिधि होती है, ये तो हमने 17 नंबर के गाथा में देखा था। तो कुंड का क्षेत्रफल आया 3 ल गुणा 1 चतुर्थांश ल गुणा 1000, और सूचीफल यानी शिखाफल जो है उसके लिए क्या लिया था हमने, 3 ल गुणा 1 चतुर्थांश ल। अभी वहां तो हमने 1000 से गुणा किया था, अब यहाँ क्या शिखाफल के लिए क्या करना है, 3 ल का 11वां भाग और फिर उसको तीसरा भाग करना, क्योंकि जो व्यास उन्होंने ऊपर जो 11 देखा ना परिधि का 11वां भाग लिया, वो तो सेंटर में होगा परंतु उसका तीसरा भाग कर दिया। तो ये शिखाफल का हुआ। अब इन दोनों संख्याओं को मिलाना है ना। अब कहते हैं अभी जो 26 गाथा के अनुसार खात फल को सिद्ध करने के लिए कुंडफल और शिखाफल इन दोनों में परिधि को 3 से छेद कर और 3 को गुणकार रूप से रखने पर कुंडफल ऐसा आता है। क्या किया उसको, पहले हमने देखा था कुंड का फल 3 ल गुणा 1 चतुर्थांश ल गुणा 1000 था, अब उसमें उन्होंने क्या लिया है, 3 से भाग दिया और 3 से गुणा किया, 3 से भाग दिया वो 3 ल चला गया, उस केवल ल रह गया, पहला 3 ल था उसमें 1 ल रह गया, અને લ ગુણા એક લ ચતુર્થાંશ ગુણા હજાર ગુણા તીન એને જો તીન લ એસા ઇકઠા રખા થા ના તીન ગુણા લ થા વો તીન કો અલગ નિકાલો ઓર લ કો અલગ લખો ક્યુંકી ગુણકાર રૂપ સંખ્યા હૈ કહીં પર ભી ઉસકા ગુણક રખો કોઈ વાત નહીં હૈ ક્યુંકી ઉસકો ઉનકો વો વર્ગ કે રૂપ મેં ઇસકો પ્રસ્તુત કરના થા શિખાફલ મેં હમને ક્યા દેખા હૈ વહાં પર ભી તીન લ થા એક ચતુર્થાંશ લ થા ફિર તીન લ ગ્યારહાંશ થા और फिर वहां वन थर्ड ऑलरेडी था ही था तो वन थर्ड से वो थ्री ल वाले थ्री को कैंसिल हो गया तो ल रह गया वहां पर और एक बार तीन से गुणा करो और पहले तीन ल वाला तीन वो तीन से गुणा करना और तीन से भाग देना तो वो तीन चला जाएगा तो इस तरह प्राप्त होता है इनमें जो समान संख्या है उसको बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में जो दो संख्याओं को गुणा करना है सॉरी ऐड करना है वो रखेंगे तो समान क्या है एक ल गुणा एक चतुर्थांश ल इंटू तीन ये दोनों में समान है अब ये समान है कॉमन है उसको हमने बाहर निकाला और जो रह गया है उसको हमने ब्रैकेट में रखा तो ब्रैकेट में क्या रहा एक हजार प्लस एक ल डिवाइडेड बाय ग्यारह इतना रह गया ब्रैकेट में और बाहर वो संख्या जो हमने निकाली थी अब इसको वो क्या करना है तो समच छेद करना
ग्यारह
हजार के नीचे छेद नहीं है उसका अर्थ है उसका छेद है एक और एक ल ग्यारह अंश उसका छेद है ग्यारह तो दोनों संख्याओं का छेद समान होगा तब एडिशन हो सकेगी तो हजार के नीचे भी ग्यारह लिखो छेद में और ऊपर भी ग्यारह लिखो यानी हजार हजार केवल लिखने के बदले हम क्या लिखेंगे ग्यारह हजार डिवाइडेड बाय ग्यारह एक ही बात हुई ना वो संख्या यानी उसकी वैल्यू उतनी रही तो ग्यारह हजार प्लस एक लाख यानी ग्यारह लाख एक लाख ग्यारह हजार हुए और नीचे डिवाइडेड बाय ग्यारह रह गए यानी ब्रैकेट की इतनी वैल्यू रही और ब्रैकेट के बाहर था उसको तो गुणकार रूप में ही था अब उसको हम रखेंगे वहां क्या रह गया था एक ल गुणा एक चतुर्थांश ल गुणा तीन से अब एक ल और एक चतुर्थांश ल है ना उसको अलग अलग लिखेंगे एक ल डिवाइडेड बाय टू इंटू एक ल डिवाइडेड बाय टू इंटू तीन उसका अर्थ क्या है व्यास का आधा गुणा व्यास का आधा गुणा तीन और गुणा वो व्यास में हाँ वो ग्यारह हजार वो जो है ना एक लाख व्यास है और हमने वहां सूत्र में क्या बताया था कि गहराई को 11 से गुणा करो और वो व्यास में मिला दो और फिर उसको 11 से भाग दो पहले बताया था ना तो ये हमें फॉर्मूला कैसे मिला उसको उन्होंने लास्ट में बता दिया अब वो कितना आता है उसके बाद 27 के गाथार्थ में हम पढ़ेंगे कल हमने पढ़ा था यानी ये जो अभी हमने ऐसे सॉल्व करके इसकी संख्या कितनी आएगी ये तो फॉर्मूला बता दिया उन्होंने बगैर तो कहते बादाल को 8 के घन यानी 512 एवं एक कम 1000 999 से गुणित कर 11 का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उसे 31 शून्यों से सहित करने पर जम्बूद्वीप सदृश कुंड और उसकी शिखा दोनों आ गए दोनों के क्षेत्रफल स्वरूप यानी घनफल स्वरूप लेना सरसों का प्रमाण प्राप्त होता है हाँ ना डिवाइडेड बाय 11 था ना 11 से डिवाइड किया था और अभी दोनों संख्याओं को मिला दिया क्योंकि शिखाफल वाली एरिया ज्यादा थी और नीचे की एरिया कम थी
यहाँ पे ऊपर हमने क्षेत्रफल देखा
अरे क्षेत्रफल यानी घनफल ही है
देखा और ये सरसों का प्रमाण है
हाँ सरसों की बात है ना
नहीं ऊपर जो हमने देखा वो
नहीं नहीं वो तो है प्रमाण योजन है प्रमाण योजन के व्यवहार योजन बनाए 500 से तीन बार गुणा किया फिर 768,000 से तीन बार गुणा किया तो अंगुल आ गए अंगुल के आगे सरसों करने के यव एवं गोल सरसों करना है, आठ को तीन, आठ का तीन बार गुणा करना और फिर दोबारा आठ का तीन बार गुणा करना, तब जाके सरसों आ जाएगी। इसलिए वो करके उन्होंने दिखाया, वो इसका इतना फाइनल रिजल्ट आता है। अब 28 नंबर की गाथा को पढ़ने जा रहे हैं, उसके ऊपर लिखा है अथ परस्पर गुणितांकम उच्चारयति। ये जो यहाँ लिखा है जितना ये प्राप्त होना वगैरह, उसमें अभी वो अंक बताएंगे, यानी फाइनल रिजल्ट कितनी संख्या में वहाँ सरसों माती है, उसमें आती है, समाती है, वो यहाँ बताएंगे। इगिन वर्ण वस गि गि दुग नवतिन्न च दचऊ पणे कति गि छक्कम पनर छत्ति सजुदम हर हि दचऊरो य पढ़म उभयम एक नव नव सप्तैकैक द्विक नव त्रियष्ट चतुः पञ्चैक त्रेक षटकम पञ्चदश षट् त्रिंशद्युतम हरहित चतुष्कम च प्रथमो भयम्। देखो यहाँ क्या कहते, देखो अब परस्पर गुणा करने से जो अंक प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं एक नौ नौ सात, एक एक दो नौ, तीन आठ चार, पांच एक तीन एक छह, और उसके बाद पंद्रह जगह छत्तीस और चार का ग्यारहवा भाग, यह प्रथम कुंड के उभय क्षेत्रफल के अंकों का प्रमाण है। एक क्षेत्रफल हमने सरसों में निकाला है, ये स्थूल चल रहा है क्योंकि तिगुणा किया है, वहां से तिगुणा, और दस के स्क्वायर रूट से गुणा करेंगे तो अलग आएगा, वो सूक्ष्म आ जाएगा। विशेषांक अभी हमने जो संख्या देखी थी ना, एक नौ नौ सात, एक एक दो नौ, तीन आठ चार, पांच एक तीन एक छ, और उसके बाद पंद्रह बार छत्तीस, लास्ट में चार बटे ग्यारह, यह प्रथम अनवस्था कुंड के उभय क्षेत्रफलों में सरसों के अंकों का प्रमाण है। अब संख्या प्रमाण यहाँ से, संख्या मान में से संख्यात असंख्यात और अनंत जो बातें हैं, तो उसकी बात यहाँ से शुरू करते हैं। अब वो कुंडों का क्या करना हो तो अभी बात बताएंगे, पहले तो कुंड क्या है, उसमें कितनी सरसों आती है, आदि बातें बताएं। तो जघन्य संख्यात, संख्यात दो से प्रारंभ होता है, अतः दो जघन्य संख्यात है, दो अंक यानी दो ये संख्या जघन्य संख्यात है। मध्यम संख्यात, जघन्य संख्यात से एकादि अंक द्वारा वृद्धि, एक आदि यानी एक वृद्धि दो वृद्धि तीन वृद्धि, यानी दो में एक वृद्धि होने से तीन हो जाएगा, यानी तीन है चार है पांच है छह है, एक एक से बढ़ते हुए जब सारे जो अंक है वो क्या है, मध्यम संख्यात है। तथा उत्कृष्ट संख्या से एक एक अंकहीन तक, क्या कह रहा है, जघन्य संख्या से एकादि अंक द्वारा वृद्धि को प्राप्त, ये मध्यम की बात चल रही है, और उत्कृष्ट संख्या से एक एक दोबारा नहीं चाहिए, एक अंकहीन तक, आपने क्या लिया दोबारा एक लिखा है, एक एक अंकहीन नहीं, हमें उत्कृष्ट मध्यम में से उत्कृष्ट बात चाहिए, केवल एक अंक ही इतना ही चाहिए। एक निकाल दो, एक ही अंकहीन तक, जैसे हम मानेंगे ना दो, हम सौ तक गिनते हैं, तो दो हमारा जघन्य संख्यात हुआ, सौ हमारा उत्कृष्ट संख्यात हुआ, तो मध्यम का कहाँ तक है, तीन से लेकर यानी दो में एक एक की वृद्धि से लेकर सौ में एक कम तक। हाँ वही एक एक नहीं, उसको टॉप मोस्ट बताना है, कहाँ तक की बात है, तक की बात है, तक यानी उसका अंतिम पॉइंट बताना है। एक एक हीन तक कैसे होगा,
तो यहाँ पे तक लिखा है ना दिनों से एक अंक हीन तक
देखो यहाँ ये बताया दो से एक एक वृद्धि से लेकर एकादि वृद्धि द्वारा को प्राप्त एकादि अंक द्वारा वृद्धि को प्राप्त तथा उत्कृष्ट अंक मान लेते सौ सौ से कहाँ तक बात है 99 तक ही बताना है ना तक यानी उसके अंतिम लिमिट बताना है हमको तक यानी कहाँ तक लेंगे पर जघन्य संख्या से एकादि अंक द्वारा वृद्धि को प्राप्त पर कहाँ तक वो कहाँ लिखा है अच्छा तो दोनों एक रखना है
तो एक रखना पड़ेगा
ठीक है रखो मैंने तो कर दिया देखो उत्कृष्ट संख्या तीसरी बात जघन्य परिता संख्यात में से ये सबसे छोटी में छोटी असंख्यात वो परिता और संख्यात अलग नहीं लिखना नहीं तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा परिता संख्यात एक शब्द लिखेंगे तो परित असंख्यात ये शब्द हो जाता है जोड़कर लिखा है वेरी गुड तो जघन्य परिता संख्यात में से एक अंक हीन करने पर उत्कृष्ट संख्यात की प्राप्ति होती है अब 29 और 30 दोनों पढ़ेंगे देखो अथ दुप पहुदी सरिसवेहिम अणवत्था पूरेदौवा इत्युक्ता तत्प्रसक्तानुप्रसक्त्या तद एतत् संबंधम निरूप्य इदानीं प्रकृतम अनुसंधाति उसका अनुसंधान करते हैं देखो क्या कहते हैं हिंदी में पढ़ेंगे ये चार नंबर का जो पॉइंट लिखा है ना हाँ चार लिखने की गरज जरूरी नहीं थी ऊपर तो तीन था अब यहाँ जो है ना अथ दुप पहुदी सरिसवेहिम चार के बदले वहाँ अब लिखना चाहिए था अब उसमें आपके इसमें क्या लिखा है ये तो गाथा के ऊपर का हेडिंग है ये जो अथ दुप पहुदी सरिसवेहिम है ना उसका ये ट्रांसलेशन है हमेशा क्या करते हैं अभी आगे के पेज पर देखो 31 नंबर की गाथा के ऊपर जो हेडिंग है ना अथ तत्स्य द्वितीय कुंडस्य अब उसका नीचे ट्रांसलेशन कैसे किया दूसरे आदि अनवस्था कुंडों का प्रमाण लाने के लिए वैसे ये चार पॉइंट यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी हाँ अब लिखो कुछ नहीं लिखो तो भी चले हाँ अथ का अर्थ था अब यहाँ आगे हर जगह उन्होंने अथ का अर्थ नहीं लिखा है लिखते हैं अब कुंडर शिखा दोनों का लिखे कहीं कहीं लिखा कहीं नहीं लिखा हम लिख देंगे देखो पढ़ेंगे गाथा 16 से 28 तक गाथा 15 में कहे हुए दुप पहुद सरिसवेहिम अणवत्था पूरे दौवा के प्रसंग में कथन किया गया है क्या कहा 15वीं गाथा में ये बताया था कि दो से लेकर है जितनी सरसों उसमें समा जाती है उतने सरसों के द्वारा वो शिखाव भरना चाहिए तो उसमें कितनी सरसों समा जाती है ये 16 से लेकर 28 तक बताया अब उसी गाथा 15 के संबंध को जोड़ते हुए जघन्य परिता संख्यात को कहते हैं यानी बीच वाली जो 16 से 28 तक की गाथा थी वो सरसों कितनी समाती है उसकी कथन था। 15 में क्या बताया था, जो प्रथम अनवस्था कुंड है वो सरसों से भर देना चाहिए। अब उसके आगे की कंटिन्यूटी यहाँ से आती है, ख्याल में आई ना बात, यानी 15 गाथा से यहाँ कंटिन्यूटी लेना। अब गाथा पढ़ेंगे पहले, पुन्ना सैमणवत्था इदिएगम्रिववसलाग कुंडम्मी तम्मज्यम सिद्धत्थे मदिये देवो वगेत्तूनम् दीवसमुद्दे दिन्ने एकेके परिसमपदे जत्थ तो हिठ्ठि मदी वही कयगत्तो ते हि भरिधवो पूर्णा सकृदनवस्था इत्ते कांक्षिप शलाका कुंडे तन्मद्य सिद्धार्थान मत्या देवो वागृहित्वा द्वीप समुद्रे दत्ते एकैकस्मिन् परिसमाप्यते यत्र ततः धस्तन द्वीपो दधिषु कृतगर्तस्तैर्भर्तव्यः। यहाँ हमने क्या पढ़ा समझ में आया? देखो पहले भर देना तो एक सरसों शलाका में डालना, और ये भरा हुआ जो कुंड है उसमें से जम्बूद्वीप से लेकर एक द्वीप एक समुद्र एक द्वीप एक समुद्र एक एक द्वीप समुद्र में एक एक सरसों डालते जाना, और जहाँ समाप्त होगी उस द्वीप या समुद्र प्रमाण उसकी सूची प्रमाण दूसरा अनवस्था कुंड बनाना। पढ़ेंगे हिंदी में गाथार्थ, एक बार अनवस्था कुंड पूर्ण भर जाए तब एक सरसों शलाका कुंड में डालना चाहिए, तथा अनवस्था कुंड के जितने सरसों हो है उन्हें बुद्धि द्वारा ऊपर लिखा ना मदीये देवो व गित्तूणम, यानी मती अपने बुद्धि में इमेजिन करो या देवों को बोला ऐसा गड्ढा करो ऐसा घर डालते जाओ, तो कहते बुद्धि द्वारा या देवों द्वारा ग्रहण कर प्रत्येक एक एक द्वीप समुद्र में एक एक दाना डालते हुए जिस द्वीप या समुद्र पर दाने समाप्त हो जाए वहां से नीचे के अर्थात जम्बू द्वीप पर्यंत पहले के सभी द्वीप समुद्रों के प्रमाण बराबर एक कुंड बनाकर गोल सरसों से भरना चाहिए। इसको वहां ऐसी बात आई कि उसकी सूची सूची ने आउटर डायमीटर जिस द्वीप में रुके हम, देखो जम्बू द्वीप है तो 1,00,000 योजन उसका व्यास है, लवण समुद्र एक बाजू कितना है 2,00,000 योजन, तो लवण समुद्र के आउटर डायमीटर कितना हुआ
2,50,000,
बीच में 1,00,000 है और दोनों ओर 2,00,000 है 5,00,000 योजन हो जाता है 5,00,000 हुआ ना, उसके आगे का जो 4,00,000 है और यहाँ का भी 4,00,000 8,5,13,00,000 हो जाएगा उसकी सूची, इसको कहेंगे उसकी सूची। अभी हम तीसरे चौथे में इमेजिन करते तो इतनी बड़ी हो जाती है,
वो ऐसा बताते हैं कि वो जो जहां लास्ट सरसों खत्म हुआ वहां से वहां तक दूसरा
कुंड इतना बड़ा बना ना, और उसमें कितनी सरसों आएगी, लाख योजन में इतनी आती है, आगे वाला तो और कितना बड़ा होगा और उसकी सूची उससे कितनी बड़ी होगी, वही सूची वही होगी जो 1,000 योजन नीचे है तो उतने, परंतु उसके बेस का सरकमफेरेंस बढ़ता जाएगा। अभी विशेषार्थ पढ़ेंगे हम, यहाँ आते हैं पेज नंबर 35 पर। संख्या प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए गाथा नंबर 14 में 4 कुंडों की स्थापना की थी, उनमें से जम्बूद्वीप बराबर व्यास और सुमेरु के जड़ के बराबर गहराई वाले, यानी 1,00,000 योजन व्यास और 1,000 योजन गहराई वाले प्रथम अनवस्था कुंड को शिखा सहित गोल सरसों से पूर्ण भरकर एक सरसों शलाका कुंड में डालना चाहिए, क्योंकि पहली बार भरा ना तो एक शलाका में एक सरसों आ जाएगी, तथा अनवस्था कुंड की सरसों बुद्धि द्वारा या देवों द्वारा उठाकर एक एक दाना एक एक द्वीप समुद्र में डालते हुए जिस द्वीप या समुद्र पर सरसों समाप्त हो जाए वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत व्यास वाला और हजार योजन गहरा ये कुछ गलती हो गई है।
नहीं, बराबर है, वहां से जम्बूद्वीप पर्यंत व्यास वाला।
अच्छा, वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत का व्यास वाला
दूसरा पानव, अरे कला का पुल बनाने की बात है,
ये भी गलत हो जाता है। वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत व्यास वाला एक और की निकल लेगी, आउटर डायमीटर नहीं निकलता है।
तो दोनों साइड लेना पड़ेगा,
यानी जम्बूद्वीप सहित सभी द्वीप समुद्रों को इंक्लूड करते हुए जो व्यास होगा उतना चाहिए। यानी ये जो थोड़ी गड़बड़ी है इस कथन में, उन्होंने मूल में क्या लिखा है देखो, तत्रारभ्य अधस्तन सर्व द्वीपो द्वीप उदधिषु प्राक्तन वेद प्रमाणेन। यानी जम्बूद्वीप पर्यंत के सभी द्वीप समुद्रों के बराबर एक कुंड बनाकर, इसका अर्थ अलग होता है। और यहाँ क्या कहते हैं, वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत व्यास वाला, वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत सभी द्वीप समुद्रों के बराबर व्यास वाला, जो ऊपर लिखा है ना,
ये त्रिज्या वाला कर देंगे तो बराबर हो
जाएगा। नहीं नहीं नहीं, त्रिज्या का यहाँ कथन ही नहीं है। ऊपर क्या लिखा है 35 पेज पर सेकंड लाइन में, जम्बूद्वीप पर्यंत पहले के सभी द्वीप समुद्रों के प्रमाण यानी समुद्रों के बराबर एक कुंड बनाकर, यहाँ वही लिखना है। वो बुद्धि द्वारा या देवों द्वारा उठाकर एक एक दाना एक द्वीप एक समुद्र में डालते हुए जिस द्वीप या समुद्र पर सरसों समाप्त हो जाए वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत सभी द्वीप समुद्रों के बराबर व्यास वाला, कि वहां मेरा ऑब्जेक्शन ऐसे, वहां से जम्बूद्वीप पर्यंत तो एक और कहीं हो जाएगा, सभी द्वीप और समुद्रों को इंक्लूड करना है तो आउटर डायमीटर मिलेगा, कुछ गड़बड़ी जाए, वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत व्यास वाला, जम्बूद्वीप पर्यंत के सभी द्वीप समुद्रों के बराबर व्यास वाला। ऊपर बराबर है, ऊपर बराबर है, गाथा अर्थ में बराबर लिया, विशेषार्थ में जरा मुझे कुछ गड़बड़ी, विशेषार्थ में नीचे से दूसरी लाइन कि जिस द्वीप या समुद्र पर समाप्त होती जी है सरसों वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत व्यास वाला, यानी ये तो इस कंफ्यूजन है थोड़ा।
नहीं, ये बराबर आपने बताया ना, पर्यंत सभी द्वीप समुद्र,
सभी द्वीप समुद्रों के बराबर ऐसा लिखना, वहीं से जम्बूद्वीप पर्यंत। हाँ, जम्बूद्वीप पर्यंत के
सभी द्वीप समुद्र,
सभी द्वीप समुद्रों बराबर व्यास वाला। सभी द्वीप समुद्रों के बराबर, आगे की बात लिखा है व्यास वाला, यानी उस समय ज्ञानचंद में उतनी सूची प्रमाण लिखा था उन्होंने, उसी का अर्थ सूची लेना, जिस द्वीप में गए उसकी सूची, तो सूची क्या है उसको उन्होंने वहां समझाया था समय ज्ञानचंद का। हाँ, आउटर डायमीटर उसका, हमारी भाषा में तो ये हो गया दूसरा अनवस्था कुंड बनाया, और वो भी ऐसे सरसों से भर देना है। अब कहते अथ तस्य द्वितीय कुंडस्य क्षेत्रफलानयनोपाय भूत गच्छमा। दूसरे आदि अनवस्था कुंडों का प्रमाण लाने के लिए गच्छ का प्रमाण कहते हैं। अभी उसका गाथा पढ़ के फिर उसका अर्थ देखेंगे हम। विदिये पढ़मम कुंडम गच्छो तदिये दुपढ़म विदिय दुगम इदि सौ अपूव गच्छा तहिं तहिं सरिसवा सज्जा। द्वितीये प्रथमं कुण्डं गच्छ तृतीये तु प्रथम द्वितीय द्विकम् इति सर्वपूर्व गच्छाः तै तै सर्षपाः साध्याः। यानी दूसरे के लिए क्या करना है, दूसरे कुंड के लिए पहले में जितने सरसों थे ना उतने द्वीप समुद्र जाएंगे, तो उतने बार लाख योजन को दुगुना 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 करना। खाली द्वीप समुद्रों की संख्या निकाल के कुछ नहीं चलेगा,
लाख योजन को दुगुना दुगुना कितनी बार दुगुना करना।
हाँ, अभी हमने कितनी बार ये 40 अंक प्रमाण देखा है, इतने सरसों है
उतने द्वीप समुद्र जाके
इतनी बार दुगुना दुगुना। हम केवल दुगुना करते हैं तो नंदीश्वर द्वीप इतने खाली उसके एक द्वीप की एरिया बढ़ती है, वहां तक की सभी की टोटल करो तो कितनी हो जाएगी। नंदीश्वर द्वीप का नंबर कितना है बोलो?
सातवां ना?
15वां द्वीप और समुद्र को गिनना है।
अच्छा,
सात द्वीप और सात समुद्र गए हैं और 8वां द्वीप है ना, उसका नंबर 15वां है। तो 15वां नंबर पर जाते हैं और उसकी सूची निकालो। अभी
15 बार 2 को वापस पे
उसके अकेले की जो है ना, यानी 15 बार 2 गुना करना है।
हाँ।
लाख को 2 गुना और फिर उसके एडिशन करना है, केवल 2 गुना 2 गुना नहीं चलेगा।
हाँ, प्लस प्लस करते जाए।
देखो 2 गुना करते नहीं, 14 बार 2 गुना करते, 15 बार नहीं, क्योंकि मूल 1 लाख रखा है, उसको कितनी बार 2 गुना किया तो 14 बार 2 गुना किया। तो 14 बार 2 गुना करते तो कितनी आती बात, कितनी बात होती है बोलो बोलो। बोलो, नंदीश्वर की पूजा नहीं करते क्या? तो बोलो ना कितना है। 163 करोड़ जो जन्म हा, 184,000 एक दिशा में जहा, 16,384 लाख योजन। अरे हमने आपको 2 संख्या बताई 14 बार, 2 संख्या 16 बार आती है तो पनट्ठी होता है।
हाँ।
अब 14 बार लिया तो पनट्ठी का 14वां भाग हुआ कि नहीं?
हाँ।
पनट्ठी है 65,000, उसका आधा वो 32,000 जो कुछ होता है आगे की संख्या, उसके आधा है 16,384 होता है। इसको हम 163 करोड़ 84 लाख योजन बताया, ख्याल में आएगा?
हाँ।
ये तो वहां उसकी अपनी हुई,
और ये तो प्लस
अब वहां तक के है, वहां तक के 1 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 8 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, वो तो 16,384 करो कितना आएगा, भूल गए सारे। अंत धनम गुण गुणियम किया था हमने, अंतिम जो है ना 16,384 उसको डबल करो और उसमें से एक माइनस करो,
16,384।
देखो छोटी संख्या बताते हैं,
छोटी संख्या का ये भी हो जाएगा,
छोटी संख्या बताते हैं। हमारी शोभा बहन वहां से सुन रही है ना, मैं अश्विन भाई के लिए प्रश्न किया था। देखो जम्बू द्वीप है 1, लवण समुद्र है 2 लाख, आगे वाला 4 लाख, बस इतना ही रुकेंगे। अभी उसको हमको 1 प्लस 2 प्लस 4 ऐसा किया था, तो ये सबकी टोटल कितनी होगी?
7
हो जाएगा ना। अरे 9 क्या माइनस कर क्या,
सॉरी माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहा हूँ। 7
उसके आगे का मिला दो, 8 तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 की कैसे निकालते हैं? तो कहते उसमें से उसको दुगुना करो, उसमें से
एक माइनस करो,
उसका फॉर्मूला अलग है, वो बाद में जब आएगा तब हम बताएंगे। क्योंकि यहाँ तो दो गुना है, तीन गुने के लिए फॉर्मूला कुछ अलग होगा, चार गुने के लिए अलग होगा, उन सबकी टोटल हम कैसे कर सकते हैं उसका फॉर्मूला है। दो गुना का तो आसान है, लास्ट जो फिगर है ना आठ,
उसका
दो गुना करो, इससे एक माइनस करो, तो वहां तक की सभी टोटल हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही करना है,
वहाँ पे तो अलग फॉर्मूला हो जाएगी, तो क्योंकि प्लस 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 करते हैं,
यहाँ सूची लिखना है, दोनों ओर की लेना है, अकेला एक ओर का नहीं लेना है, दोनों ओर की बात होगी ना। अब यहाँ देखेंगे, वो दोनों हाँ सूची हो जाएगी, उसका आउटर डायमीटर लेना से वहाँ, यहाँ से वहाँ तक। जैसे मनुष्य ढाई द्वीप करते हैं ना हम, ढाई द्वीप में क्या लेते हैं, बीच वाला 1 लाख, लवण समुद्र 2 लाख, विधाकी खंड 4 लाख, कालो देवी समुद्र 8 लाख, और आगे पूरा पुष्कर नहीं लेते, उसका आधा लेते हैं,
4 लाख।
तो एक बाजू 22.5 और दूसरे बाजू 22.5, 45 लाख योजन, ये उसकी मनुष्य लोक की सूची
हो जाएगी।
अब यहाँ क्या देखते हैं हम, ये बताएंगे सब, देखो यहाँ बता रहे हैं, ये पहले कुंड उसके लिए गच्छ है। अब ये गच्छ क्या है उसको बताएंगे। देखो हम गाथार्थ पढ़ते हैं, दूसरे आदि अनवस्था कुंडों का प्रमाण लाने के लिए गच्छ का प्रमाण कहते हैं। दूसरे अनवस्था कुंड के लिए प्रथम कुंड के सरसों गच्छ है, यानी प्रथम कुंड में जितने सरसों है वो जो प्रमाण है वो गच्छ है, नहीं इतने द्वीप समुद्र आगे जाना है। गच्छ का अर्थ होता है उसकी संख्या,
नंबर
नंबर ऑफ सरसों। अभी गच्छ का अर्थ अलग अलग जगह अलग होता है, पर यहाँ तो नंबर ऑफ सरसों लियो ना, ये किसका गच्छ है, ये द्वीप समुद्रों का प्रमाण। हमारा गच्छ क्या है, द्वीप समुद्रों का प्रमाण। तो दूसरा कुंड जो बनाना है तो उसमें कितने द्वीप समुद्र चले जाएंगे हम आगे,
ये जो अपने
तो पहले अनवस्था कुंड में जितने सरसों आते हैं वो उसका गच्छ है, कितना है गच्छ है ना, द्वीप समुद्रों का प्रमाण। अब देखिए तीसरे अनवस्था कुंड के लिए प्रथम और द्वितीय कुंड के सरसों गच्छ है, क्योंकि उसमें क्या करना है। देखो हम मान लेते हैं कि पहले कुंड में 4 ही सरसों थे और दूसरे कुंड में 16 आ गए, मान लेते हैं। तो पहली बार वो 4 सरसों डालते गए तो एक जम्बू द्वीप में एक आगे, ऐसा करते चौथे द्वीप तक हम, ये जो कोई द्वीप या समुद्र हो चौथे तक पहुंचे, तो उसके लिए चौथे वाले की जो सूची है वो हमारा प्रमाण है। उसके आगे जो दूसरा कुंड भरेंगे हम, मान लेते 16 से भर गया हमने माना है, तो वो 16 यानी वो चौथे के आगे 16 काउंट करना है, यानी वो कौन सा द्वीप समुद्र लेना है, 4 प्लस 16 20 नंबर का लेना है। तीसरे अनवस्था कुंड के लिए यदि पहले में 4 सरसों है दूसरे में 16 है
तो 16 प्लस 20,
यानी पहले कुंड की प्लस द्वितीय कुंड की मिलकर जो संख्या होगी उस नंबर का जो द्वीप समुद्र है उसकी सूची निकालनी पड़ेगी। अब बाप रे नहीं करो, अभी तो सेकंड नंबर पर है। पहले कुंड में जितने सरसों आते हैं उतने घन प्रमाण तो अनवस्था कुंड करने हैं, ख्याल में ना, और हरेक इतना उसके व्यास बढ़ता है तो उसमें सरसों कितनी आएगी ये इमेजिन करो। आप केवल अनवस्था कुंड कितने भरेंगे कितने हो गए वो मैं बता रही हूँ आपको, पढ़ेंगे यहाँ से। देखो 35 पेज पर गाथा तो जो लिखा है ना सेंटर में, दूसरे अनवस्था कुंड के लिए प्रथम कुंड के सरसों गच्छ है, तीसरे अनवस्था कुंड के लिए प्रथम और द्वितीय कुंड के सरसों गच्छ है, इसी प्रकार जो पूर्व पूर्व के गच्छ है उनके द्वारा उत्तरोत्तर अनवस्था कुंडों की सरसों का प्रमाण साधा जाता है। वो सरसों का प्रमाण इसलिए साधा जाता है कहा, तो वो प्रमाण कितना बड़ा कुंड होगा और फिर उसमें कितने सरसों आएंगी, इस तरह से उसको साधना है, विशेषार्थ पढ़ेंगे। दूसरे कुंड के सरसों का प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रथम कुंड के सरसों गच्छ स्वरूप है, तीसरे कुंड के सरसों के लिए प्रथम और द्वितीय कुंड के सरसों गच्छ स्वरूप है, तथा चौथे कुंड के सरसों के प्रमाण के लिए प्रथम द्वितीय और तृतीय कुंडों के सरसों का प्रमाण गच्छ है। इसी प्रकार सर्व पूर्व पूर्व गच्छों के द्वारा आगे के अनवस्था कुंडों के सरसों का प्रमाण साधना चाहिए और उन गच्छों को ग्रहण कर ऋण अहिय पद एक कम गाथा 309 में कहे गए करण सूत्रानुसार द्वितीय आदि अनवस्था कुंडों का सूची व्यास, ये सूची व्यास यहाँ पर आ गई बात, हम जो कह रहे थे ना, हाँ नहीं नहीं दीर्घ सूची, अच्छा वहाँ क्या लिखा था ऐसा आप कहते सूची सूची प्रमाण दीर्घ ही होगा ऐसा लगता है। सूची होनी चाहिए, दीर्घ ही होगा ऐसा लगता है। वासो तिगुणों परिधि गाथा 17 के करण सूत्रानुसार सूची व्यास को, यानी जो सूची निकलेगी ना जिस समुद्र में अंतिम वो सरसों डालते हैं उसकी सूची व्यास निकालना, उसका विस्तार हमको मालूम है दो गुना, परंतु उसका पूरा व्यास यानी बीच के सभी समुद्र द्वीपों को इंक्लूड करते हुए उसका व्यास निकालना, पूरा राउंड जो होगा उतना करना है। दीर्घ सूची प्रमाण अब ये कैसे निकालना क्या बताएंगे। अभी 36 पृष्ठ पर आते हैं। अथ तत्कृत गर्ते भ्रुते सति किम जातम इति अत्र आह। गर्ते ने गड्ढा, यानी वो ऐसा गर्त करने पर क्या 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 मिलेगा, वो बात अभी यहाँ बताएंगे। किम जातम यहाँ लिखा है उसका अर्थ, दूसरा अनवस्था कुंड भरने के बाद क्या करना चाहिए उसे कहते हैं। 32 नंबर का जो गाथा है उसकी उसको देखेंगे। विदिये वारे पुण्यम अनवट्ठिदमिदि सलाग कुंडम मे पुनरपि निघिद्विदौवा अवरेगा सरिसवाण सला। द्वितीये वारे पूर्णम् अनवस्थितमिति शलाका कुंडे पुनरपि निक्षेप्तव्या अवरैका सर्षपाणां शलाका। इति दूसरा अनवस्था कुंड भरने के बाद क्या करना चाहिए उसे कहते हैं। दूसरी बार बनाए हुए अनवस्थित कुंड को पूर्ण भरकर पुनः एक दूसरी शलाका स्वरूप सरसों शलाका कुंड में डालना चाहिए। शलाका स्वरूप यानी ये गिनती है किसकी, अनवस्था कुंडों की। प्रथम बार अनवस्था कुंड जब भर दिया तो हमने एक सरसों शलाका में डाली, फिर वो प्रथम बार भरा हुआ जो अनवस्था कुंड के सरसों है वो एक द्वीप एक समुद्र में डाले, जिसमें वो अंतिम सरसों गिरी उसका जो आउटर डायमीटर है जिसको हम सूची कहते हैं, सूची व्यास, उस प्रमाण एक गोल गड्ढा करना उतना ही ऊंडा 1000 योजन वाला, तो उसमें जितने सरसों आएगी ना यानी वो भर देना उसको। तो दूसरा अनवस्था कुंड किया और भर दिया, भरते ही एक सरसों शलाका में डाली दूसरी, वो भी सिगाओ भरने तक डालते जाना, तब तक अनवस्था कुंड आगे आगे भरते चले जाएंगे। यानी वो एक बार भरने के लिए अनवस्था कुंड कितने बार होगा, जो 40 अंग प्रमाण बार होगा और हर एक अनुष्ठा कुंड कितना बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि वो सारे ही आगे के कुंडों में जाना, फिर पहले से नहीं लेना है, जहाँ रुके थे वहां से आगे के कुंडों में डालते हैं, सॉरी द्वीप समुद्र में डालना है। अरे हाथ फिर भी कम रहते हैं, कितना वो जो अंतिम जो कुंड भरे है ना उसमें कितनी सरसों आएगी, तो वैसे तो जगन्य परिता संख्यात आएगी, और द्वीप समुद्र कितने हैं?
असंख्यात। अरे 25
25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले है, वो असंख्याता संख्यात का प्रमाण है, असंख्याता संख्यात का, यानी जगन्य परिता संख्यात रेस्ट जगन्य परिता संख्यात जगन्य युक्ता संख्यात आते हैं, जगन्य युक्ता संख्यात का वर्ग करो तो जगन्य असंख्याता संख्यात आता है, और उसके कितने बार वर्ग करो तो जाके ये मध्यम संख्या आएगी। इतने तो द्वीप समुद्र है, उसमें से कुछ हमने गिनती में लिए है, यानी वो द्वीप समुद्र भी कितने हो गए तो राजू कितना बड़ा होगा, ख्याल में आती है बात? और ये सारे प्रमाण योजनाओं में बातें हैं, यानी हम उसको इमेजिन करने लगते तो चक्कर आने लगते है ना, यहाँ तक आते हैं ना वो समय ज्ञान चंद्रिका में, फिर छोड़ देते सब पढ़ना, बस अभी बहुत हो गया ऐसा लगता है, यानी माथे में भार लगने लगता है ना। नहीं, ये तभी हमने पहली बार जब होता है तभी तो ऐसे क्या पढ़ रहे हैं क्या चल रहा है ऐसा ऐसे इमेजिनेशन जब उसके बाहर चला जाता है सब, ये तो अभी मिनिमम असंख्या तक नहीं पहुंचे, अभी हम तो उसकी शुरुआत किए, अब तो दूसरे अनवस्था कुंड तक पहुंचे। देखो यहाँ से पढ़ेंगे, दूसरा अनवस्था कुंड भरने के बाद क्या करना चाहिए उसे कहते हैं, दूसरी बार बनाए हुए अनवस्थित कुंड को पूर्ण भर कर, उसको अनवस्थित कह दिया है। पुनः एक दूसरी शलाका स्वरूप सरसों शलाका कुंड में डालना चाहिए, अनवस्था कुंड नाम है ना उसका, क्योंकि उसका साइज चेंज होता है इसलिए उसको अनवस्थित कहा, अवस्थित नहीं है वो, अनवस्थित है, बाकी सब वो अवस्थित है, उतने के उतने रहने वाले हैं। विशेषार्थ, द्वितीय बार बनाए हुए अनवस्थित कुंड को पूर्ण भरकर पुनः एक दूसरी शलाका स्वरूप सरसों शलाका कुंड में डालना चाहिए। जैसे मान लो प्रथम अनवस्था कुंड 10 सरसों से पूर्ण भर गया था, एक एक द्वीप समुद्र में एक एक दाना डालने पर 10वें क्षीर वर समुद्र पर दाने समाप्त हो गए। ये जरा राइट साइड में फिगर देखना, 37 पृष्ठ पर जम्बू द्वीप है एक नंबर पर, अभी क्रम से यानी कितवा द्वीप है किस समुद्र में, एक दो तीन चार डायरेक्ट नाम दे, एक द्वीप का नाम यानी एक द्वीप को नंबर है, समुद्र को दूसरा नंबर है, फिर द्वीप को तीसरा नंबर, इस तरह से नीचे उन्होंने उसके योजन बताए हैं और ऊपर उसके नाम लिखे हैं। तो जम्बू द्वीप एक है, लवण समुद्र दो नंबर, घातकी खंड तीन नंबर का है, कालो देवी समुद्र चार नंबर का, पुष्करवर द्वीप पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर पुष्करवर समुद्र, सातवें नंबर पर वारिणीवर द्वीप, कहाँ लिखा
है?
नहीं मेरे में बराबर है,
हमारे में बराबर
है। देखो आठवें नंबर पर वारिणीवर सागर, नौवें में क्षीरवर द्वीप और दसवें में क्षीरवर सागर, अभी जो नए है ना उसमें गलत है, पुराने में बराबर है। देखो फिर नाम पढ़ती हुई से कर लेना, लवण समुद्र सॉरी जम्बू द्वीप लवण सागर, धातकी खंड कालोदक सागर, पुष्करवर द्वीप पुष्करवर सागर, वारिणीवर द्वीप वारिणीवर सागर, जो करेक्शन कर देना आप, क्षीरवर द्वीप क्षीरवर सागर, ये वारिणी है का वारुणी
है,
कह गए वारुणी, वारुणी होना चाहिए, वारिणी नहीं है नाम। हाँ विशेषार्थ में भी वारुणी लिखा है, वारिणी नहीं है वो शब्द, वारुणी है। थोड़ा थोड़ा याद है ना, भूगोल में पढ़ा था, नहीं वो तो मैंने पढ़ा नहीं था, देखो दसवें यहाँ तक विशेषात की तीसरी लाइन में आए थे, दसवें क्षीरवर समुद्र पर दाने समाप्त हो गए, है ना, क्योंकि दस दाने थे। अतः सुमेरु के पूर्व में जम्बूद्वीप का अर्ध भाग आख आधा लाख योजन, भले हम उसको एक देखते हैं परंतु वह है तो आधा, क्योंकि सेंटर से एक बाजू आधा हो जाता है। फिर 2 लाख लवण समुद्र, 4 लाख धातकी खंड, 8 लाख कालोदक समुद्र, 16 लाख पुष्करवर द्वीप, 32 लाख पुष्करवर समुद्र, 64 लाख योजन नहीं लिखा है कहीं के, हाँ 64 लाख वारुणीवर द्वीप, 128 लाख वारुणीवर समुद्र, ये योजन कहीं लिखा ही नहीं मेरे में, 250 लाख योजन यहाँ लिखा है, 256 लाख योजन क्षीरवर द्वीप, 512 लाख योजन क्षीरवर समुद्र, सबकी टोटल 1022.5 लाख योजन सुमेरु के पूर्व में, और उतना ही यानी 1022.5 लाख योजन ही सुमेरु के पश्चिम में है। अतः संपूर्ण व्यास 2045 योजन व्यास प्राप्त हुआ। वो कैसे, वो राइट साइड में उन्होंने बताया है, जो हमने आपको डबल डबल बताया ना, उसमें से आधा कम कर दो। नहीं समझे?
डबल डबल बताया,
सेंटर में हमने एक से शुरुआत किए थे ना।
अच्छा, आधा
एक के बदले वहाँ
आधा लाख,
यानी वो जो सूत्र है ना, दो गुना करने का, ये 10वां नंबर है, तो 10 बार दो गुना करो, यानी 9 बार दो गुना होगा वैसे तो,
और 50,000
तो 9 बार दो गुना किया तो कितना आया, 8 बार करते हैं तो 256 आते,
512
हो गए ना, अंतिम के 512 हो गए। अब वहाँ तक की एरिया निकालनी है और वो भी एक साइड की निकलेगी,
तो 512 × 2
1024 और उसमें आधा नहीं कम करना, डेढ़ कम करना है, क्योंकि एक और दो नहीं, आधा और दो है। आधे से शुरुआत की थी ना, आधा प्लस दो, एक और दो नहीं है,
आधा ही कम करना पड़ेगा ना, दो कैसे कम करना पड़ेगा, दो तो ये साइड पे, ये दूसरी साइड पे भी होगा,
डेढ़ कम करना होगा,
दो से चालू करो आप, 2-4 वगैरह से शुरू करो, दो से अगर शुरू करते तो शुरुआत की संख्या दो है, दो माइनस करो, लास्ट में कितना आया था, 1024, 1024 में पहली फिगर दो माइनस कर दो, 1022 आई, और उसमें ये आधा मिला दो,
1022 प्लस
क्योंकि जहाँ से लेकर दो गुना है वहाँ से काउंट करना है, यहाँ एक था ही नहीं ना, हमारी संख्या दो से दो गुना करते जाओ,
तो डेढ़ काउंट करना पड़ेगा, 1024
एक बाजू आया हो,
1022 में से,
1024 में से डेढ़ कम कर दो, तो 1022 और आधा,
और उसका डबल करो,
2044
और
45,
2045
ये जो लिखा है ना यहाँ पर। अब उन्होंने फिगर बताई ना, हमने वहाँ करेक्शन भी कर लिया, जो कुछ है वो वारिणी के बदले वारुणी करो, और वो जो द्वीप सागर बराबर है कि नहीं वो देख लो। अब उसके फिगर के नीचे हम पढ़ रहे हैं 37 पेज पर, इस क्षीरवर समुद्र का व्यास, ये समुद्र कितने नंबर का है, समुद्र का नंबर, 5वां नंबर का, कुछ सुना है इसके बारे में? हाँ, बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है ना, तो एक क्षीर समुद्र से वो जल लाते हैं, वो कोई क्षीर वहाँ दूध नहीं है, पानी है, हाँ टेस्ट उसके दूध के समान है,
निर्मल,
सारे ही बीच में, ढाई द्वीप को छोड़ो और स्वयंभू रमण को, समुद्र को छोड़ो, बाकी सभी वो जीवन से विरहित है, जलचर नहीं रहे उसके अंदर, लोग हमको पूछते हैं वो कैसे वो छानते हैं क्या करते हैं इस वही है, परंतु उसमें क्या, वो तो वहाँ भी सूर्य है, उस सूर्य से तपे हुए रहते हैं, उसमें तो कोई वो प्रासुक ही रहता है जल वहाँ का। देखो इस क्षीर वर समुद्र का व्यास 2045 लाख योजन का है। व्यास है ना, अभी वो उसकी सूची व्यास लेना है, क्योंकि एक बाजू उसका है उसको विस्तार कहेंगे। ये जो 512 योजन लिया ना, वो तो एक बाजू का विस्तार है उसका, उसको व्यास नहीं कहते। व्यास तो पूरे दो तटों के बीच वाला जो है उसको हम व्यास कहते हैं। व्यास की तिगुनी परिधि होती है, यानी अभी ये दसवें जो सागर है उसकी सूची व्यास और उसमें कितने सरसों आएगी उसकी बात निकाल रहे हैं। अतः 2045 लाख गुना 3 6135 लाख योजन की परिधि हुई। परिधि गुणा वो व्यास का चौथाई भाग, तो इतने वर्ग योजन क्षेत्रफल हुआ। वो उन्होंने निकाल के बताया 3136518 75 और ऊपर 80 है ना, इतने वर्ग योजन स्क्वायर हो गए ना, गुणा इंटू ल कर दिया उन्होंने, स्क्वायर हो गया। तथा अभी उसको 1000 योजन वेद से गुणा करेंगे तो उसमें और 3 बढ़ गए। इतने घन योजन घनफल दूसरी बार बने हुए अनवस्था कुंड का प्राप्त हुआ। ये केवल कुंड का बताया, वो सिगाऊ नहीं भरा क्या? आगे आगे बताएंगे शायद, चित्र अगले पृष्ठ पर है। अच्छा, वो शिखा फल भी निकालेंगे अब, यानी कुंड में कितने आती है वो बताया उन्होंने। उसका वो तो घन योजन यानी ये तो प्रमाण योजन है, अभी उसके तो सारे सरसों बनाए पड़ेंगे। हाँ, उसका अभी शिखा फल बताएंगे अलग। माना हुआ दूसरी बार अनवस्था कुंड, ये चित्र बनाया उन्होंने, गहराई उतनी लेनी है 1000 योजन की, और उसका जो व्यास लिखा है ना सेंटर में, ये फिगर के सेंटर में देखो परिधि कितनी बतनाई उन्होंने साइड में 6135 लाख योजन, और बीच में व्यास कितना लिखा है 2045 लाख योजन, और इस गोल एरिया का क्षेत्रफल निकाला उन्होंने योजनों में, प्रमाण योजन वर्ग में 3136518 75 11 ये क्षेत्रफल हुआ, और उसी को 1000 से गुणा करेंगे तो घनफल मिला। ये प्रमाण योजनों में मिला, अब उसके ऑर्डिनरी योजन करेंगे, उसके अंगुल करेंगे, फिर उसके सरसों करेंगे। प्रथम कुंड के सदृश इस कुंड की शिखा का भी क्षेत्रफल निकालना चाहिए, वो उससे भी ज्यादा होगा ना, अभी हमको ये पता चला है। हाँ, क्योंकि अभी व्यास कितना बड़ा हो गया है। तथा इस कुंड को भी शिखा सहित गोल सरसों से भरना चाहिए। यथा 10 नंबर तक दूसरी बार अनवस्था कुंड बन चुका है, अतः 11वें नंबर से एक एक दाना एक एक द्वीप समुद्र में डालते हुए जहां सरसों समाप्त हो जाए वहां से जम्बू द्वीप पर्यंत व्यास वाला और 1000 योजन गहराई वाला तीसरा अनवस्था कुंड भरकर शलाका कुंड में तीसरा सरसों का दाना डाल देना चाहिए। यही वो भाषा वापर रहे जम्बू द्वीप पर्यंत व्यास वाला, परंतु ये समझना हमको सभी बीच के सभी द्वीप समुद्र को अंतर्गत करते हुए उसकी पूरा व्यास लेना है। हाँ, जम्बू द्वीप पर्यंत के सभी,
यहाँ पे अनवस्था कुंड बड़ा बड़ा होता जाता है और सलाका का तो बात तो सेम है,
वही बनेगा सभी तीनों कुंड समान। तो अनवस्था का नाम ही इसलिए लिया कि वो बड़ा बड़ा होता है।
हाँ, तो अभी ये जो दूसरा जो बनाया उसकी सरसों जब भी खलास होगी तभी तक में ये सलाका कुंड कितने भरेंगे,
कैसे भरेंगे? जब तक तीसरा अनवस्था कुंड नहीं भरेगा तब तो क्षरा का डालेंगे नहीं उसमें सरसों। एक वहां से जम्बूद्वीप पर्यंत के सभी द्वीप समुद्रों के बराबर व्यास वाला। जैसे हमने पहले लिखा था ना वैसे, वहां से जम्बूद्वीप पर्यंत के सभी द्वीप समुद्रों के बराबर व्यास वाला। ये तीसरा अनवस्था कुंड भरकर, भर रहा है ना अभी, तो शलाका कुंड में तीसरा सरसों का दाना डाल देना चाहिए। ये आपने सुना कि नहीं सुना, तीसरा डालना चाहिए। जब भरेगा तभी, पहले दाना डालो फिर उसके आगे बढ़कर एक एक दाना डालते जाओ आगे। अन्य बाहर से डालने, इसमें से नहीं कम करो, नहीं तो एक द्वीप कम करने जाना पड़ेगा। वो तो नंबर काउंट करने के लिए वहां डालना है। अथ एवं कृते पे किम इति अत्र आह, तो इतना कर लेने पर आगे क्या करना है उसे कहते एवं सलाग भरणे रूवं निक्षिवदुपडि सलागम्हि ऋत्तिक देवी भरिदे अवरे गंपडि सलागम्हि एवं शलाका भरणे रूपं निक्षिपतु प्रतिशलाकायां रिक्तिकृतेऽपि भृते अपरैकं प्रतिशलाकायां। इसी क्रम से बढ़ते हुए जब शलाका कुंड भर जाए तब क्या कहते हैं, यानी यदि पहले कुंड में जो हम मान लेते हैं ना चार सरसों से एक कुंड भरता है, मान लेते, तो पहली बार भरा अनवस्था कुंड चार थे ना, तब जाके एक सरसों का उसमें पड़ा शलाका में, दूसरी बार वो बड़ा हुआ तभी भरा, तब दूसरी बार शलाका में डाला, तीसरी बार अनवस्था कुंड भरा तब तीसरी बार डाला, चौथी बार का अनवस्था कुंड भर दिया तब चौथी बार शलाका में डाला, तो अब शलाका कुंड भर गया, तब जाके प्रति शलाका में एक डालना। उस चार बार अनवस्था हुआ तब शलाका भर गया, शलाका भर गया इसलिए प्रति शलाका में एक डालो। अब वो शलाका को खाली करो, फिर शलाका को खाली करो और अनवस्था को एक एक में डालते जाओ। पांचवी बार जब अनवस्था भरेगा तब शलाका फिर से भरना चालू करो। जब शलाका फिर भर जाए तब जाके प्रति शलाका में एक और डालो। हम चार का नाप लेते हैं तो
16,
चार बार होते हैं तो
एक
शलाका में एक,
16 बार,
चार 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 16 बार होते हैं तो शलाका कुंड भरता है तो प्रति शलाका में एक पड़ती है। इसी तरह और 16 बार हो गया तो प्रति शलाका में दूसरी, और 16 बार होगा तो प्रति शलाका
बार हो जाएगा तभी,
तो ये 64 बार होता है तो
तीसरा
प्रति शलाका भरेगी, तब महाशलाका में एक सरसों चली जाएगी। हम पढ़ेंगे, यानी अनवस्था कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, आगे के कुंड भले उतने ही रहते परंतु वो उतने चार थोड़े ही, वहां पर वहां तो 46 अंग प्रमाण सरसों आती है और उतनी बार अनवस्था होगा तब जाके एक बार शलाका भरे जाएगी और प्रति शलाका में एक सरसों आएगी केवल। देखो इसी क्रम से बढ़ते हुए जब शलाका कुंड भर जाए तब एक दाना प्रति शलाका कुंड में डालना और शलाका कुंड खाली करके पूर्वोक्त प्रकार ही पुनः उसे भरकर प्रति शलाका कुंड में दूसरा दाना डालना चाहिए। इसी प्रकार बढ़ते हुए व्यास के साथ हजार योजन गहराई वाले उतने बार अनवस्था कुंड बन जाए जितने की प्रथम अनवस्था कुंड में सरसों थे। हम माने थे चार थे तो चार बार अनवस्था हो जाए तब एक बार शला का कुंड भरेगा। एक बार शला का कुंड भरेगा तब एक सरसों प्रतिकर शला का कुंड में डालकर शला का कुंड खाली कर दिया जाएगा। वो तो केवल गिनने का तरीका है। तथा जिस द्वीप या समुद्र की सूची व्यास सदृश अनवस्था कुंड बन चुका है उससे आगे के द्वीप समुद्रों में एक एक दाना डालते हुए जहां सरसों पूर्ण पुनः समाप्त हो जाए वहां से लेकर जम्बूद्वीप पर्यंत वही वही सूची वाला जम्बूद्वीप पर्यंत के सभी द्वीप समुद्र प्रमाण नवीन अनवस्था कुंड बनाकर भरा जाएगा। तब एक दाना शला का कुंड में डाला जाएगा। पुनः उस नवीन अनवस्था कुंड के सरसों ग्रहण कर आगे आगे के द्वीप समुद्रों में एक एक दाना डालते हुए जहां सरसों समाप्त हो जाए उतने व्यास वाला अनवस्था कुंड जब भरा जाएगा तब शला का कुंड में एक दाना और डाला जाएगा। इस प्रकार करते हुए जब पुनः नवीन नवीन वृद्धिंगत व्यास को लिए हुए प्रथम अनवस्था कुंड की सरसों के प्रमाण बराबर यानी उतनी बार नवीन अनवस्था कुंड बन चुकेंगे तब शला का कुंड भरेगा और दूसरा दाना प्रति शलाका में डाला जाएगा। यानी प्रथम अनवस्था कुंड में जितने सरसों थे उतनी बार जब अनवस्था कुंड हो गए तब शलाका कुंड एक बार भरेगा। प्रति शलाका में एक सरसों डाली जाएगी पुनः उसके आगे उतने ही बार हो जाएंगे बढ़ते हुए
वर्ग का प्रमाण
तब इस तरह से वो प्रोसेस चलता जाएगा। हाँ पहले से दूसरी बार कितना बड़ा होगा क्योंकि इतने 40 अंक प्रमाण द्वीप समुद्र जाना है उतने प्रमाण सरसों की बात नहीं है उतने द्वीप समुद्र इतने काउंट करो आप 4-6-10 काउंट किए तो इतना बड़ा हो जाता है व्यास। अथ एवं सत्यपि किम इति अत्र आह इस प्रकार करते हुए क्या होगा उसे कहते हैं 34-35 एवं साविय पुन्ना एगम निखिव मला महासला गम्मे एसा विकमा भरिदा चत्तारि भरंति तत्काले चरिमण वठिद कुंडे सिद्धत्था जेत्तियापमानं तम अवर परितम संखम रूणे जेठ संखेजम एवं सापि च पूर्णा एकम निक्षिप महाशलाकायाम एषापि क्रमाद् भूत्वा चत्वारि भ्रियन्ते तत्काले चर्मानवस्थित कुंडे सिद्धार्थायावन्ति प्रमाणं तत् अवर परितम संख्यम रूपो निर्देष्टं संखेयम्। ये जो अंतिम अनवस्था कुंड हो जाएगा ना प्रमाण में हमारे में यावंती प्रमाणम तत् प्राकृत में कह रहे कि संस्कृत प्राकृत तो प्रमाण ही कहते प्रमाण कहते। हाँ यानी ऐसे एक एक होते प्रतिशाला का भी पूर्ण हो गए तब एक उसमें महाशाला का मन डाल इस तरह से महाशाला का भी पूरी भर जाए तब तक ये प्रोसेस करना। उस समय जो अनवस्था कुंड हो जाया जाता है ना उसको भर देना क्योंकि वो भरेगा तभी शलाका में जाएगा, तभी प्रजापति शलाका में जाएगा, तभी महाशलाका में जाएगा। तब उस उतनी बार जब भरेगा ना, अंतिम जो भरेगा उतने जघन्य परिता संख्यात प्रमाण है, उस सरसों का जो प्रमाण होगा उतना। देखो यहाँ लिखते हैं, इसका अर्थ देखेंगे हम, इस प्रकार करते हुए क्या होगा उसे कहते हैं। इस प्रकार जब प्रतिशाला का कुंड भी भर चुकेगा तब एक दाना महाशाला का कुंड में डाला जाएगा। क्रम से भरते हुए जब, यानी जितने काल में ये चारों कुंड भर जाएंगे, तब अंत में जो अनवस्थित कुंड बनेगा, क्योंकि हर बार एक शाला का खाली करते जाना, फिर प्रतिशाला का में भरते जाना, फिर शाला का प्रतिशाला का भी एक बार भरेगा तो महाशाला का में एक दाना डाला, तब सभी रीते कर दिए, महाशाला का केवल रह गया। फिर शाला का भर जाए तो प्रतिशाला का में डालते रहते, प्रतिशाला का भर जाए तब जाके महाशाला का में दूसरी सरसों, इसे तीसरी चौथी, या अंत में जब महाशाला का पूरा भर जाएगा तब चारों ही भरे हुए हैं अभी, है ना। तब वहां जो अनवस्थित कुंड है उसमें जितना भर जाएगा वो प्रमाण है। देखो यहाँ क्या लिखा, इसमें से एक कम करने पर उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण प्राप्त होता है। विशेषार्थ, इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम से जितने सरसों प्रथम अनवस्था कुंड में थे, मान लेते एक शब, उसके वर्ग प्रमाण जब अनवस्था कुंड बन चुकेंगे तब शलाका कुंड उतने ही सरसों प्रमाण बार भरेगा। यानी हमने देखा ना, चार मानते हैं तो चार अनवस्था कुंड भरते, क्योंकि एक बार भरेगा तो एक दाना डाला, दूसरी बार दूसरा दाना, तीसरी बार थी तो चार बार भरेगा तो चार दाने जाएंगे, यानी चार बार डालने से शलाका एक बार पूरा भरता है, तो प्रति शलाका में एक जाती है। तो उसके वर्ग प्रमाण जब अनवस्था कुंड बनेंगे तब शलाका कुंड उतने ही सरसों प्रमाण बार भरेगा। यानी 16 बार जब अनवस्था होते हैं
तो प्रतिशलाका एक बार भरेगा,
प्रतिशला का एक बार भरेगा, क्योंकि हर चार बार भरेगा तो एक एक शलाका कुंड भरेगा, हर चार बार फिर एक एक बार भरेगा, प्रतिशलाका में एक एक चली जाएगी। यानी जितनी ओरिजिनल एक संख्या है तो एक बार होता है तो शलाका भर जाती है, एक स्क्वायर बार हो जाता है तो प्रतिशलाका भर जाती है, एक घन बार हो जाएगा तो महाशलाका भर जाएगी। हम यही बात देखो फिर पढ़ेंगे। इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम से जितने सरसों प्रथम अनवस्था कुंड में थे, हम वहां क्ष लिखेंगे ना समझने के लिए, क्ष क्ष एक्स, उसके वर्ग प्रमाण जब अनवस्था कुंड बनेंगे, यानी क्ष वर्ग एक्स स्क्वायर, तब शलाका कुंड उतने ही सरसों प्रमाण बार भरेगा, उतने सरसों नहीं आएगी, उतनी बार शलाका कुंड भरेगा, तब एक बार प्रतिशलाका कुंड भरेगा और एक दाना महाशलाका में डाला जाएगा। इस प्रकार क्रम से वृद्धिंगत होने वाला अनवस्था कुंड जब प्रथम अनवस्था कुंड की सरसों के घन प्रमाण बन चुकेगा, यानी कितनी बार वाला है वो, तो पहले अनवस्था कुंड में जितने सरसों थे उसका घन, यानी क्ष घन एक्स क्यूब प्रमाण बन चुकेगा, तब प्रथम अनवस्था कुंड की सरसों के वर्ग प्रमाण बार शलाका कुंड भर जाएंगे, तब प्रथम अनवस्था कुंड की सरसों प्रमाण बार प्रतिशलाका कुंड भरेंगे, तब एक बार महाशलाका कुंड भरेगा। एक बार जब अनवस्था कुंड होते हैं तो शलाका पूरा भर जाता है, एक स्क्वायर बार हो जाता है
तो
प्रतिशलाका भर जाता है, एक घन बार होता है तो महाशलाका पूरा भर जाता है।
एक घन की एक रेस टू फोर बार,
एक घन देखो चार बार होगा ना अनवस्था कुंड, तो शलाका में एक पड़ी,
16 बार हो गया तो
नहीं, चार बार नहीं, चार बार हो गया तो पूरा भर जाएगा, चार बार यानी चार सरसों आई ने, यानी पूरा भर गया तो प्रतिशलाका में एक आएगा,
तो चार का चार रेस्टू चार का
फोर टू फोर, हाँ यानी चार का वर्ग 16 बार हो गया, 16 बार अनवस्था हुआ तो चार बार शलाका हुआ, तो चार सरसों प्रतिशलाका में आई,
तो
यानी एक प्रतिशलाका भर गया तो एक महाशलाका में एक सरसों आई।
हाँ।
ये चार का वर्ग हुआ ना, अब चार का घन यानी 64 बार हो जाएगा तब जाके महाशलाका पूरी भर जाएगी। कुछ कंफ्यूजन है?
नहीं।
मान लो उन्होंने तो 10 लिए, हमने तो 4 ही लिए थे हैं। मान लो प्रथम अनवस्था कुंड 10 सरसों से भरा था, अतः बढ़ते हुए व्यास के साथ 10 अनवस्था कुंडों के बन जाने पर एक बार शलाका कुंड भरेगा तब एक दाना प्रतिशलाका कुंड में डाला जाएगा। यानी 10 बार होते तो प्रतिशलाका में एक दाना आता है। इसी प्रकार बुद्धिगत व्यास के साथ 10 का वर्ग अर्थात 100 अनवस्था कुंडों के बन जाने पर 10 बार शलाका कुंड भरेगा तब एक बार प्रतिशलाका कुंड भरेगा तब एक दाना महाशलाका कुंड में डाला जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हुए व्यास के साथ 10 के घन यानी 1000 अनवस्था कुंडों के बन जाने पर 10 के वर्ग बार यानी 100 बार शलाका कुंड भरेगा की बात है, तब 10 बार प्रतिशलाका कुंड भरेगा तब एक बार महाशलाका कुंड भरेगा। यहाँ लिखा देखो, 1000वां अनवस्था कुंड होगा तब शलाका 100 बार भरेगा, प्रतिशलाका 10 बार भरेगा और महाशलाका एक बार भरेगा। इस प्रकार इस अंतिम अनवस्था कुंड में शिखा सहित गोल सरसों की जितनी संख्या है वह संख्या जघन्य परिता संख्यात की है। आप इमेजिन करो, पहली बार जब भरा था उसमें जो सरसों की संख्या है उतने घन बार अनवस्था कुंड करने हैं और उससे डायरेक्ट हमको नहीं मिलता है, उससे इतने तो भरे पर पहले से दूसरी बार कितना बड़ा हुआ उतने द्वीप समुद्र आगे गए, तीसरी बार कितना हुआ उतने द्वीप समुद्र आगे गए,
तो व्यास बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो हमें वो डायरेक्ट कितने बने उससे वो इमेजिन नहीं हो सकते, हर बार व्यास कितना बढ़ रहा है, केवल इतनी बार अनवस्था कुंड है ये बात नहीं। अब यहाँ लिखा ना 1000 अनवस्था कुंड बनेंगे, तो 1000 बनेंगे तो हर बार कितने बड़े बड़े होंगे। ऐसे हमारे जो 40 अंक प्रमाण है उतने घन प्रमाण बार अनवस्था कुंड बनेंगे, तो पहले से दूसरा ही कितना बड़ा होगा, लाख में से वो कितना बड़ा एरिया उसकी हो जाती है। हर बार इतने बड़े 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 होते होते इतने वो संख्या के घन बार अनवस्था कुंड हो जाए, अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों पूरी शिखा उभर जाएगी उतना प्रमाण है जघन्य परिता संख्या का। इस प्रकार इस अंतिम अनवस्था कुंड में शिखा सहित गोल सरसों की जितनी संख्या है वह संख्या जघन्य परिता संख्यात की है और उसमें से एक अंक कम करने पर उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी तो हमने एक टप्पा पार कर दिया, जघन्य असंख्यात क्या है उसमें जरा बहुत ज्यादा तकलीफ होती है।
ये कुंड भरते हैं वहाँ पे हम लोग शिखारूप नहीं भरते,
कहाँ पर
जो आगे जो कुंड
सभी शिखारूप भरना है।
अच्छा, शिखा रूप
करते बिल्कुल, क्योंकि हमने 10-10 की बात की थी ना, पहले भी 10 माई थी, ये फॉर एग्जांपल हमने तो 4 आपको बताई थी, तो पहले में जितने शिखा रूप से भरी थी सरसों उतने ही हरेक में भरनी है। नहीं, एक अंदर गया 3 ऊपर रहे 10 में से हम कहीं ना अंदर 4 है तो ऊपर 6 है इस तरह से। अब अथ एतद् एव धृत्वा संख्यात अनंतोत्पत्ति भेद प्रभेदम षोडश गाथया आह। यहाँ कहते हैं अब इसी प्रमाण को मानकर यहाँ ध्रुत्वा और असंख्यात एक शब्द चाहिए, अथ एतदेव ध्रुत्वा संख्यातानंतोत्पत्ति, वो असंख्यातानंतोत्पत्ति है। ध्रुत्वा और असंख्यात एक कर देना, आपके एक है क्या, अलग अलग है? हाँ, क्योंकि ध्रुत्वा असंख्यात और अनंत उत्पत्ति भेद प्रभेदम षोडश गाथया आह। अब इसी प्रमाण को मानकर असंख्यात और अनंत की उत्पत्ति एवं उनके भेद प्रभेदों को 16 गाथाओं द्वारा कहते हैं। यानी ये जगन्य परिता संख्यात हुआ, अभी हमारा असंख्यात का मिनिमम हुआ, अब इसके आगे असंख्यातों के और अनंतों के भेद बताएंगे। 36-37 कल पढ़ेंगे क्या? आज बहुत हो गया, 2-3 मिनट बाकी है, अभी रुकेंगे यहाँ पर, सैचुरेशन ज्यादा हुआ ना। हाँ, केवल पढ़ना है? हाँ चलो पढ़ेंगे। नहीं, मैंने तो अभी वे कह रहे पढ़ने में क्या है। हाँ?
एक पैराग्राफ पढ़ लेते ना।
नहीं नहीं नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 2-3 मिनट है अभी बस। नहीं, श्लोक फिर कल पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे डायरेक्ट। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मयंक भाई।